राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीन अपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजिहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतुष्ट। तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं। अहं निरवद्य संयुजाम् प्रसादु कृत्यं विबुधा जुषातिव मा भजन जुर्जर गृह शृङ्खला संवृश्य तदवः प्रतिजात साधु। हम लोग गोपियों का कृष्ण के प्रति बस पीछे प्रति क्या होता है क्या भाव है इसका वर्णन अभी तक हम लोग गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव इसका वर्णन कर रहे थे। सनातन गोस्वामी जी इसका वर्णन कर रहे थे। गोपियां कृष्ण के मिलन में और कृष्ण के विरह में कैसे आनंदित और दुखी होती हैं, उनके क्या भाव होते हैं और विरह में भी कैसे मिलन जैसा ही उनका भाव होता है। जगत में कहीं भी किसी भी साहित्य में नहीं दिखता है। अब यहां पर कृष्ण का गोपियों के प्रति क्या भाव है अब इसका वर्णन कर रहे हैं। इसी के लिए वो कृष्ण अपने मुख से इसका वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं प्यारी गोपियों तुम्हारा हमारे साथ में जो प्रेममय संबंध है और संयोग है क्या लिख रहा है सब हृदय में देखेगा नहीं समय है। वो वीरवद्य है संपूर्ण से निर्मल है गोपियों का। इसके पहले बतलाया गोपियों का देह और दैहिक सब कुछ कृष्ण के प्रीति के लिए सब कुछ है। अपने लिए वो कुछ भी नहीं करती। अपना श्रृंगार अपना खाना भोजन दूसरे लोगों से प्रीति उनकी किससे अधिक प्रीति होती है जो कृष्ण के प्रिय हैं उन्हीं से उनकी प्रीति होती है। हम कभी कभी अपने गुरु और अपने इष्ट देव का ध्यान उतना नहीं रखते, हमको उसी से प्रीति करना चाहिए जो हमारे गुरु के अत्यंत प्रियतम है, हमारे कृष्ण के अत्यंत प्रियतम है। हमारा जो कुछ भाव है किसी से प्रति का तारतम्य, तो सब इसी पर रहेगा कि हमारे गुरु जी की जो जितनी अधिक सेवा करते हैं और गुरु जी के जितनी अधिक प्रिय हैं वो हमारे अधिक प्रिय होंगे। गुरु जी से जो विमुख हैं या जितने दूर हैं उससे हमारा दूर का संबंध रहेगा। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अधिक प्रेम रखते हैं, कृष्ण के लिए सर्वस्व देते हैं, उनके प्रति भी उनकी ऐसी भावना होती है। ललिता जी राधा जी को शिक्षा दे रही हैं, देखो तुमको एक बात बतलाती हूँ, कृष्ण जिसको प्रीति करते हैं उसको तुम प्रीति करना यदि कृष्ण का प्यार चाहती हो तो, और कृष्ण से जिसका संबंध नहीं उसे बहुत दूर लाखों दूर रहना। यदि तुम्हारा कोई अप्रिय व्यक्ति भी है किंतु कृष्ण का प्रिय है तो बस उससे प्रेम मत व्यवहार रखो, अपना सब छोड़ दो, अपना विचार। इसी तरह से हम लोग भी देखेंगे जो गुरु का जो अत्यंत अधिक प्रिय है वही हमारा अधिक प्रिय है। गुरु को अधिक कौन प्रिय होगा? जो भगवान का सेवा भजन साधन जो जितने ही उन्नत रूप में करते हैं उतना ही अधिक प्रिय है। कृष्ण की सेवा जो संपूर्ण रूप से जो करता है कृष्ण उसको अधिक प्यार करते हैं। इसलिए राधिका जी का ये विचार है या गोपियों का विचार ये है, यदि हमें छोड़ करके कृष्ण जिसको वो प्यार करते हैं हम उसकी दासी होएंगे और दासी होकर के उसको प्रसन्न करके कृष्ण से उसका मिलन कराएंगे, ये साधारण लोगों के लिए संभव पर नहीं है। तो चंद्राली इत्यादि तो कृष्ण की बड़ी प्यारी सखियां हैं, तो उनसे ऐसा क्यों, तो उनकी दासी हो क्यों नहीं जाती? तो इसको समझना चाहिए ये चंद्रावली पद्मावती और श्रद्धा इत्यादि अलग नहीं है कुछ, वो राधा जी बनी हुई है प्रेम के विकास के लिए, कृष्ण को प्रेम रस आस्वादन करने के लिए वही बनी हुई है इस रूप में। और कभी कभी ऐसी ही भावना रखती हैं, यदि हिरण के प्रति ऐसी भावना रख सकती हैं हिरणी के प्रति, गायों के प्रति ऐसी भावना रख सकती हैं, तो इनके प्रति वैपरीत्य बुद्धि कैसे रहेगी? नहीं। इसलिए उनका उनके प्रति वैवर्णस्य नहीं है बल्कि प्रेम की एक प्रतिद्वंदिता है जिसके बिना यह प्रेम संजीवित नहीं रह सकता। इसको साधारण लोग वहां पर साधारण में साधक की स्थिति में रुचि की स्थिति में ही ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाता है, आसक्ति में कहीं भी किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं रह सकता, द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, निष्ठा नहीं वो कम नहीं लगता है यदि रहेगा भी तो, और आसक्ति में तो एकदम शत्रुता का भाव ही नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, किसी के साथ में अनबन हो सकती है किंतु हम उसका बुरा करेंगे ये कभी उसके मन में नहीं रह सकता है, नहीं तो शुद्ध सत्य उसके हृदय में नहीं आएगा। तो जिसको माँ प्रेम कहाँ अनुराग और महाभाव तक जिसको है वहां पर प्रेम और ईर्ष्या द्वेष नहीं है, केवल प्रेम का वैचित्र्य है, ये हम लोग उसको नहीं समझ सकते, साधारण लोगों के लिए समझना संभव पर नहीं है। जब नारद जी की ही बात हम नहीं समझ सकते कि किस प्रकार से उन्होंने जमलार्जुन को अभिशाप दिया, वो क्रोधित होकर के नहीं, उसको भगवान से कृष्ण का मिलन कराने के लिए उन्होंने ऐसा अभिचंपात किया, यह हम उनकी ही बातें नहीं समझ सके। इसलिए इन चीजों को समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। इसे गोपियों का सब कुछ कृष्ण के लिए है। कृष्ण का कैसा है, यदि गोपियां अपने प्राण कोटि रूप से कृष्ण के चरण रख की चंद्रिका की निछावर करती हैं, अपने प्राणों को, कोटि कोटि प्राणों को कृष्ण के नख चंद्रिका की आभा पर ही निछावर कर देती हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भी अपना सर्वस्व राधिका के चरणों में निछावर कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर यह बतला रहे हैं, ये कृष्ण की बल्कि कृष्ण की ये क्या हीनता नहीं जो कृष्ण उनसे हीन बन गए, छोटे बन गए, बल्कि कृष्ण का ये बड़प्पन है। तो वही कह रहे हैं यहां, पहले गोपियों ने प्रश्न किया कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर, और अंतर ध्यान होने के बाद में गोपियों ने बड़े विरह से गोपी गीत का ये गायन किया, रोते रोते रोते। तब कृष्ण हठात उपस्थित हुए उनकी सभा में, और उनके अंगराग कुमकुम से सने हुए रंगे हुए दुपट्टों पर ओढ़नी पर उन्होंने आसन बनाया, और कृष्ण उस पर आधे मुस्कुराते हुए आधे लज्जित होते हुए उस पर बैठे। उस समय उनका रूप कैसा हुआ, मनमथ मनमथ रूप, ऐसे बढ़कर के और कोई सुंदर रूप उनका नहीं होगा। और उस समय में गोपियों ने उनसे पूछा, प्रेम की कुछ परिभाषाएं होती हैं, तो जो प्रेम करता है उससे साधारण तौर से प्रेम किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेम नहीं करने पर भी उनसे प्रीति रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं प्रेम करें या ना करें कोई वो किसी पर भी प्रेम नहीं करते। तो आप तीनों में से कौन से हैं, आपका व्यवहार कैसा है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन तीनों में से कोई नहीं, प्रेम के बदले जो प्रेम करना चाहता है जैसे हमसे भी वो प्रेम करे, मैं प्रेम करता हूं उससे वो भी करें, तो ये बनियागिरी है, ये प्रेम नहीं है। हम अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, हम अच्छा व्यवहार करें, किसी से अपेक्षा मत रखो जो यही हमारे के साथ में अच्छा ही व्यवहार करें, नहीं तो दुखी हो गए, ये बनियागिरी है। इसलिए जो हमसे प्रेम करता है उसे बनियागिरी का मैं भाव नहीं रखता, जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है वो है गुरुजन, माता पिता और गुरुजन, माता पिता भी गुरुजन के अंतर्गत है। कोई पुत्र या शिष्य प्रीति रखे न रखे किंतु पिता और गुरु उसे स्नेह करता है और उसका कल्याण चाहता है, भले ही वो उसका विपरीत काम करे किंतु कभी भी उसका अमंगल नहीं चाहेगा, उसके प्रतिदान की अपेक्षा नहीं, यद्यपि की रखते हैं लोग किंतु शुद्ध पिता कभी भी आकांक्षा नहीं रखता, माता मैया नहीं रखती, तभी उसका कल्याण, यहां तक कि घर से निकालकर उसे पीठ पर पीटने पर भी ये नहीं कहेगी मैया और बाप ये तुम तुम्हारा संहार हो जाए, तुम्हारा स्वर बनाकर ये नहीं कहे, बेटा गोली से मार सकता है किंतु शुद्ध माता पिता ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इनका प्रेम धर्म युक्त है, इसमें उनकी सज्जनता भी है, सौहार्द है, सौहार्द में उनका प्रीति उनके प्रति, और इसमें शुद्ध है, इसमें तुम लोग आ सकती हो, किंतु ये कहा नहीं, किंतु हम इसमें भी नहीं है। और तीसरी बात, कोई प्रेम ना करे और करे, ये चार प्रकार के आत्मकाम, आत्माराम, कृतघ्न और गुरुद्रोही, चार। आत्माराम, मैं आत्माराम नहीं, आत्माराम नहीं तो तुमको बुलाया कैसे, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, ये तुम्हें आत्माराम कैसे हुआ? तुमको बंसी से बुलाया, बीच बीच में मिलता हूँ, अभी देखो मैं अभी तुमसे मिला, इसलिए आत्माराम भी नहीं, आत्मा काम भी नहीं, हमारी कामनाएं भी पूर्ण नहीं हुई। और गुरुद्रोही मैं नहीं, यदि होता तो तुम लोगों ने बुलाया, मैं कैसे आया? गुरुद्रोही भी नहीं। और क्या रहा? अकृतज्ञ, मैं कृतज्ञ नहीं, अकृतज्ञ नहीं हूं, की हुई भलाई को मैं मानने वाला हूं, इस तरह से भी नहीं। इस प्रकार से उनको निरुत्तर कर दिया। इसके बाद में कहते हैं, प्यारी गोपियों और सब हैं, मेरी और तुम्हारी प्रीति परम पवित्र है, मैं तुम्हारी प्रीति को बढ़ाने के लिए ही वहां से अंतर ध्यान हुआ था, और जगत में तुम्हारी इस प्रीति की घोषणा है, जो तुम्हारे समान और विश्व में किसी का प्रेम नहीं है, इसको घोषणा करने के बतलाने के लिए। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति कोई बहुमूल्य चीज पाले और पा करके उसको अच्छी तरह से नहीं रखा, वो चीज खो गई, खो जाने पर उसको पता चला कि ये तो बहुमूल्य हीरा था, तो जैसे उसके लिए छटपटाता है, उसी तरह से मैं बीच से अंतर ध्यान हो गया था, किंतु था कहाँ, तुम्हारे पास ही में था, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था, तुम्हारे इसको सुनने के लिए तुम हमको कैसे गाली देती है या क्या करती है उसको सुनने के लिए, और तुम्हारी प्रीति को बढ़ाने के लिए किया था, इसलिए हमारे ऊपर में ईर्ष्या मत रखना, द्वेष मत रखना, कोई दोष मत देखना। और उसके बाद में तब ये कह रहे हैं, न पारे हम निर्वध्य संजीवन, गोपियों हमारा और तुम्हारा मिलन निर्वध्य है। निर्वध्य माने शास्त्र, लोक, परलोक, किसी भी दृष्टि से कहीं भी इसमें गंदा का कोई भी भावना या भोग की लिप्सा या कहीं भी बुरी बातें इसमें नहीं है। स्मार्ट किसको कहते हैं? जो स्थूल दृष्टि से किसी पर दोष आरोप करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मान ले कि ये किसी के प्रति मायाबद्ध होने के बाद में एक स्त्री के प्रति आकर्षित हुआ, आत्मा का उससे क्या संबंध है? कुछ? आत्मा तो उसकी पवित्र है, आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये विचार सुखदेव गोस्वामी नारद जी जैसे महात्मा कर सकते हैं, किंतु इसके नीचे वाले इतना विचार नहीं करेंगे, लौकिक विचार भी उनमें आएगा। लौकिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति, कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे से पति से मिलती है, तो ये बहुत ही गर्हित काम और दुराचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मृति में हमारे शंख लिखित मनु जी ने और पराशर इत्यादि ने बहुत सब लोगों ने इसको गर्हित माना है, बुरा माना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे से यदि संबंध रखती है तो लोक परलोक दोनों ही उसके नष्ट हो जाते हैं, इसलिए स्मृति शास्त्र में इसे गर्हित माना गया, लोक समाज में भी इसे बुरा माना गया और वो दंडनीय भी है। लोग उसे, समाज के लोग उसे घृणा करते हैं, जाति पाति से निकाल देंगे, उसका छुआ हुआ पानी नहीं पीते। किंतु यदि कोई ऐसा करे अपने पति को छोड़ करके भी, यदि कृष्ण से प्रेम करे तब क्या होगा? तो ये खराब होगा कि नहीं? ये खराब है। क्यों? कृष्ण ही यथार्थ में आत्मा के भी आत्मा के आत्मा प्राण पति और सर्वस्व है। इसलिए मंदोदरी, तारा, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, ये सब पांच कन्याएं हैं, वैवाहिक नहीं माना गया, और इनका पात्र स्मरण जो करेगा वो पतिव्रता हो सकती है, पतिव्रताओं का भी इनका स्मरण करना चाहिए, किंतु पांचों हैं विग्रही लोक देशी से,
रावण को छोड़ करके मंदोदरी विभीषण से शादी किया, उसके साथ में रही। तारा भी अपने पति बाली को मरने के बाद में सुग्रीव के साथ में रही। द्रौपदी के 5 पति हैं, कुंती के भी 6 पति हैं, पांच पति हैं। उस तरह से अहिल्या के भी अपने पति को छोड़ करके इंद्र के साथ में उसका मिलन हुआ। तो इस तरह से इनका कोई भी पतित्व नहीं है, ये पतिव्रता नहीं है, किंतु कृष्ण को ही या राम को अपना सर्वस्व प्रियतम समझा, इसलिए ये पांचों कन्याओं के कन्याएं और पतिव्रता को भी चिरस्मरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, क्योंकि कृष्ण को ही परम पति समझा। गोपियों ने क्या किया अपने पतियों को छोड़ करके लौकिक दृष्टि से, और कृष्ण के को अपना प्रियतम माना। अच्छा, उनका लौकिक पति भी कौन था? कृष्ण ही थे, किंतु ये लोगों के समझ में नहीं आएगा ये कैसे। उनकी शादी भी यदि हुई थी तो कृष्ण से ही शादी हुई थी, जब ब्रह्मा जी के राधिका जी की शादी कृष्ण की से हुई थी, भंडीर वन में हुई थी। उनके जो दूसरे पतियों का स्वरूप है वो क्या है? वो भी कृष्ण का की छाया है, वो अलग से कुछ अभिमन्यु तभिमन्यु नहीं है। इसलिए इनके लौकिक दृष्टि से भी पारलौकिक दृष्टि से भी कृष्ण से इनका मिलन परम पवित्र है। इसलिए कह रहे हैं इस तथ्य को कृष्ण जानते हैं, या उनके जो परम भक्त हैं, जो उच्च कोटि के हैं, प्रेम के 2.5 अक्षर के पंडित हैं, वो लोग समझेंगे। साधारण लोगों के लिए समझना कठिन है, वो नहीं समझ पाते हैं कि सत्यभामा रुक्मिणी से ये क्यों गोपियां श्रेष्ठ हैं, उनके समझ में नहीं आता। बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों, श्री संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य लोग नहीं समझ सके, तर्क वितर्क किया था, अंत में बलदेव विद्याभूषण ने उनको परास्त किया। इसलिए यहां पर कृष्ण स्वयं अपने मुख से ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जो तुम्हारा जो प्रेममय मिलन है वो लौकिक रीति से, परमार्थ की दृष्टि से, परलोक की दृष्टि से और लौकिक दृष्टि सब दृष्टियों से ये परम पवित्र है। हमारे लिए तुम लोगों ने दुष्कर गृह श्रृंखलाएं, जिसको छेदन करना बड़ा भारी कठिन है। गृह की श्रृंखलाएं मैंने पति हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, पिता हैं, माता हैं, हमारे घर के पशु हैं, रसोई का कार्य है, और ये सब जितने गृह देहदायक चीजें हैं, उन गृह की श्रृंखलाओं को लोहे की श्रृंखला से भी मजबूत हैं, इनको काट करके आना भगवान का भजन करना, वो भी संपूर्ण रूप से, ये बड़ा ही कठिन है। हम लोग आज करेंगे, समझते हैं कि हम अभी नहीं भजन करने योग्य हैं, हम गृह की श्रृंखलाओं को काट करके भी अभी नहीं काट पा रहे। अच्छा, अभी धीरे 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 करेंगे ना? कैसे धीरे धीरे करें? अच्छा, थोड़ा सा और कम करेंगे, फिर कम करेंगे, कम करेंगे, आज इसी में हो जाएगी तो हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए, होगी भी नहीं, बराबर कठिन है। आपने विवाह किया या विवाह करके भी उसे छोड़ दिया, ये बड़ी भारी बात नहीं है। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा सोचता है अनाशक्त रहेंगे, अनाशक्त रह करके उसको कार्यतः पद त्याग कर दें ऊपर और नीचे से, ये बड़ा भारी कठिन है। इसलिए गीता के इस श्लोक का अर्थ वो लगाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, आसक्ति काट दो और किस संसार में बने रहो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी कहते हैं नहीं, स्वरूपता और कार्यता दोनों को एकदम काटो। किस लिए? जब अंदर से आसक्ति कट गई तो फिर इसकी क्या जरूरत है? कृष्ण के लिए सब कुछ क्यों नहीं करते? यही कारण है, पाते बड़ा भारी कठिन है। गोपियां इसे बहुत ऊपर की चीजों को भी, जितना संसार में जहां जो कुछ दार्शनीय था सब काटा। ऐसा कर सकोगे तो संपूर्ण से कृष्ण के प्रिय पात्र हो सकोगे और भजन कर सकोगे, समझोगे। किंतु इतना कहा, अभी तो आसक्ति ही काटो यदि यही नहीं कट रही, पैसे का मोह नहीं कट सकता है, पैसे का मोह ही नहीं कटता, अभी प्रतिष्ठा की भावना नहीं कटती है, इसलिए गृह श्रृंखलाओं को तुमने काटा। गोपियों को अब लज्जा काटना बड़ा बड़ी मुश्किल है, लज्जा भी को काट दिया, सब कुछ छूटेगा, लज्जा नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा की लालसा ये भी काट दिया। लोक धर्म की भी जलांजलि उन्होंने दी। हमारे परिजन हमको कहते हैं कि ये व्यभिचारिणी हो गए, ठीक है कहते रहे आप, ननद गो जा तुई बोल दे तुई नगरे राई कलंक डूबे थे कृष्ण कलंक सागर, श्याम के कलंक के सागर में ये डूब गई, भले ही कहते रहे सब लोग, कोई परवाह नहीं, कहे सब, लज्जा को भी छोड़ दिया, ऐसा छोड़ना बड़ा भारी, द्रौपदी के लिए भी संभव नहीं हुआ, वहां के सत्यभामा रुक्मिणी के लिए भी संभव नहीं है, सीता जी के लिए भी नहीं है, बहुत कठिन है। तुम लोगों ने सब कुछ को छोड़ करके संपूर्ण रूप से हमें भजन किया, हम लोग मापे अपने को, वी शुड ट्राई टू सी दैट हाउ वी आर डूइंग, हाउ मच वी हैव गिवन अप ऑल दीज थिंग्स फॉर कृष्णा, वी हैव गिवन समथिंग बट नॉट फुल्ली, समथिंग सो मच थिंग, सो मेरे पास में अप्रतिदान की कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारे इस ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, उऋण होने की बात क्या, बिंदु मात्र भी उसका परिशोध मैं नहीं कर सकता, आई कैनॉट रिपे यू, ए लिटिल फ्रैक्शन इवन आई कैनॉट रिपे, सो आई एम डेटेड टू यू, मैं तुम्हारा चिरणी हूं, देवताओं जैसी लंबी आयु पाने पर भी तुम्हें यदि ऋण शोधन करने का मैं प्रयत्न करूं तो लाखों लाखों जन्मों में देवताओं की आयु होती है लंबी, एक मनवंतर काल तक, उसमें भी अपने ऋण से, तुम्हारे ऋण से मैं अपने को शोधन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट रिपे यू, इन द होल लाइफ ऑफ इंद्र फॉर वन मनवंतर आई कैन नॉट रिपे यू, तब तुम अपने आप अपने साधु कुत्ते से ही हमारे प्रति प्रसन्न हो, साधु माने उदारता से, तुम्हारी उदारता ही तुम्हारा ऋण उतार सकता है, और कुछ हमारा ऋण, इसलिए मैं श्रद्धा के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया। सनातन गोस्वामी जी टीका का तात्पर्य बतला रहे हैं, सनातन गोस्वामी नई गिविंग एक्सप्लेनेशन टू दिस श्लोक। अब तक हमने इस श्लोकों में गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव बतलाया, गोपियों के कृष्ण के प्रति कैसा भाव है, कृष्ण के लिए ही जीती और मरती हैं, श्रीमद्भागवत में जो कहा है आगे ये सब इसको बतलाएंगे, कहां कहां पर कैसे गोपियों के लिए उन्होंने कहा है, तो गोपियों का यहां पर कृष्ण के प्रति, गोपियों का के प्रति कृष्ण के भाव कैसे हैं उसको ये बतला रहे हैं। किसी भी साहित्य में श्रीमद् भागवत को छोड़ करके ये कहीं नहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ ग्रंथ है। और शास्त्र में उन्होंने कहा कि मैं भक्तों का हृदय हूं और भक्त हमारे हृदय हैं, ये भी बतलाया है, उद्धव को अपना बहुत श्रेष्ठ भक्त बतलाया है, किंतु इस तरह से कहीं नहीं बतलाया है, स्वयं भगवान कौन कह रहे हैं, राम नहीं कह रहे, नृसिंह बामन इत्यादि नहीं, कौन कह रहा है, द्वारकाधीश नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं, नंदनंदन भी नहीं, राजबिहारी से एकदम राधा कांति एक स्वयं गोपीजन वल्लभ ये कह रहे हैं अपने मुख से, सर्वोत्कृष्ट भगवत्ता की एकदम अंतिम सीमा वो कृष्ण यहां पर कह रहे हैं, अपने पूर्ण भाव में है, पूर्णतम भाव में इस समय कृष्ण कह रहे हैं। इस श्लोक में यहां से आरंभ करके 9 श्लोकों में कृष्ण अपने भावों को व्यक्त करेंगे, श्रीमद् भागवत से ले आएंगे। इसमें रास क्रीड़ा के में हमने बतलाया प्रसंग, अंतर्ध्यान होने पर ब्रजदेवियों के महाआर्तनाद को सुन करके उनके सामने में फिर प्रकट हो गए। तव कथामृतम सप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृहन्ति ते भूरिदा जना। और भी सब श्लोक उन्होंने अंत में उन्होंने गाया क्या है, यत्ते सुजात चरणम वरुहम तनेषु गीतासनै यदधीमहि कर्कशेषु तेनाथ विम अटसि तदभ्यसतेन किंचित् कृपादिभिः भ्रमति धीर्यः। कृष्ण संभाल नहीं सके, अपने आप उनके सामने प्रकट हो गए और कुमकुम उनके कुछ कुमकुम अर्पित।